नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानतिमिरांध कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम राम
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के बुधवार के कार्यक्रम में। भगवद गीता का दूसरा अध्याय प्रारंभ कर चुके हैं हम पिछले बुधवार से, जो कि सांख्य योग जिसे नाम दिया गया हमारे आचार्यों ने और व्यासदेव जी ने, और उसके साथ साथ गीता का सार श्रील प्रभुपाद जो कहे हैं, क्योंकि भगवान कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म कांड, भक्ति, आत्मज्ञान, इन सब का निचोड़ इस एक अध्याय में दिए। और पिछले हफ्ते हमने इस दूसरे अध्याय का पहला श्लोक लिया, जिसमें अब तक संजय धृतराष्ट्र को विवरण दे रहे हैं अर्जुन की स्थिति, शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति। रथ पर बैठ गए अर्जुन, गांडीव छोड़ दिया है उन्होंने, और शोक से संविग्न, अश्रु पूर्ण कुलेक्षण और विषाद में डूबे हुए अर्जुन। और भगवान अब अर्जुन की इस परिस्थिति को देख रहे हैं और संजय कहते हैं कि अब भगवान बोलना शुरू किए, अर्थात संजय के अनुसार भगवान का गीत प्रारंभ होने वाला है, अर्थात भगवत गीता। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है दूसरे अध्याय का ये दूसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनार्यजुष्टं अस्वर्ग्यं अकीर्तिकरं अर्जुनं। हमारे आचार्यों ने बहुत गहरी टीकाएं इस एक श्लोक पर लिखी है, और केवल जो पहला शब्द है श्री भगवान उवाच, केवल उसी के ऊपर ऐसी विविध टीकाएं लिखी हैं। और हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि संजय व्यासदेव, हालांकि संजय को दिव्य दृष्टि स्वयं व्यासदेव जी ने ही दी, और स्वयं व्यासदेव जी अब गणेश जी को गीता लिखने के लिए कहे, उन्होंने उच्चारण किया भगवत गीता का, तत्पश्चात गणेश जी लिख रहे थे। व्यास गुफा, गणेश गुफा, जहां पर ये सब कुछ हुआ बद्रीनाथ धाम में। तो सोच विचार कर गणेश जी ने लिखा है, हम जानते हैं कथा, और सोच विचार कर व्यास देव जी ने, किस लिए इतना सोच विचार ये कर रहे थे, क्योंकि व्यासदेव जी और संजय जैसे आचार्य जब वो भगवत गीता सुनते हैं और वो जब भगवत गीता सुनाते हैं तो वो यथा अनुरूप सुनाना चाहते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इतना जोर दिया कि भगवत गीता केवल मत लिखो, भगवत गीता यथा रूप, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई यथा अनुरूप। तो इसलिए गीता की शुरुआत मानो यदि इस श्लोक से हम लें, अर्थात भगवान बोलना शुरू किए हम, तो यह जानना बहुत आवश्यक है कि संपूर्ण गीता में कहीं पर भी कृष्ण उवाच नहीं है। श्री कृष्ण उवाच कहीं पर भी नहीं। और मैं गिनती कर रहा था, संपूर्ण गीता में 28 बार श्री भगवान उवाच शब्द आया है और कहीं पर भी श्री कृष्ण उवाच या गोविंद उवाच या मधुसूदन उवाच और इतने सारे अन्य भगवान को उल्लेख करते हुए संजय ने भगवान के नाम लिए हैं। जैसे कि पिछले श्लोक में याद है, पिछले श्लोक में भगवान को किस नाम से पुकारा संजय ने? मधुसूदन, मधुसूदन के नाम से पुकारा, उवाच मधुसूदन। वो कह रहे हैं, संजय बोल रहे हैं, उवाच मधुसूदन। और ये श्लोक शुरू हुआ है उवाच भगवान। तो कोई व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा, कोई नया व्यक्ति भी पढ़ रहा है, अरे भाई पिछले श्लोक में तो कहा कि मधुसूदन बोलने वाले, इस श्लोक में ये भगवान कौन आ गए? हो सकता है कोई नया व्यक्ति भ्रमित हो जाए। इसलिए जानना बहुत आवश्यक है कि हालांकि संजय बहुत से कारणों के वजह से भगवान को विभिन्न नामों से पुकार रहे थे, परंतु अब जब भगवान जस्ट शुरू कर रहे हैं बोलना, या भगवान अब इस श्लोक में बोल चुके हैं, ये श्लोक ये भगवान की वाणी है, अब कुतस्त्वा कश्मल एदम, कहां से ये सब कश्मल, ये कलमश तुम्हारे अंदर आ गए? तो संजय श्री कृष्ण को भगवान पुकार रहे हैं, व्यासदेव जी श्री कृष्ण को भगवान पुकार रहे हैं। तो ये जानना हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है कि श्री भगवान उवाच का महत्व क्या है, क्यों इन्होंने पूरी भगवत गीता में कहीं पर भी भगवान का और कोई नाम नहीं उल्लेख में दिया, केवल श्री भगवान। सबसे पहले व्यासदेव जी हम सबको यह उद्धृत कराना चाहते थे कि श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये बहुत आवश्यक जानना कि श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। एते चांश कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में ही भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहा गया है कि वही एकमेव स्वयं भगवान है और कोई नहीं दूजा। दूसरा कारण, भगवत गीता को प्रमाणित करने हेतु। कैसे इसे हम समझे कि भगवत गीता, कई बार लोग सोचते हैं कि किसी ग्वाल बाल ने सुनाई। भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाल भी थे, भगवत गीता किसी वैश्य ने सुनाई। भगवान श्री कृष्ण वैश्य परिवार में उन्होंने अपनी लीलाएं की। भगवद गीता एक चोर ने सुनाई, माखन चोर। भगवद गीता स्त्री लंपट रासलीला करने वाले उन्होंने सुनाई। तो भगवान की जो वृंदावन लीला या अन्य कोई भी लीला यदि लो, उनको लेते हुए कोई यदि कहे कि ये कृष्ण, इनका इतिहास यदि देखें और ये गीता सुना रहे हैं, क्या गीता सुननी चाहिए? कोई प्रश्न पूछ सकता है, क्या इनके मुख से गीता सुननी चाहिए? इसलिए यहां पर भगवान गीता सुना रहे हैं, इसलिए ये प्रामाणिक है, इसमें कोई दूजा संशय नहीं है या कोई प्रश्न नहीं है कि भगवद गीता किसी साधारण व्यक्ति ने सुनाई है। और इसलिए गीता में ही भगवान ने अपनी भगवत्ता, भगवान ने वहां पर अपना माधुर्य इतना नहीं दिखाया गीता में, भगवत्ता भगवान ने भगवद गीता के द्वारा दिखाई। सातवें अध्याय में, नौवें अध्याय में, ग्यारहवें अध्याय में भगवान अपनी महानता भगवत्ता का एक विश्लेषण दे रहे हैं, एक रूपरेखा दे रहे हैं केवल। तो इसलिए भगवद गीता को प्रमाणित करने हेतु, अर्जुन को आकृष्ट करने हेतु, कैसे? क्योंकि अब तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपना सखा मान रहे हैं, और जैसे एक मित्र अपने मित्र के सामने अपना हृदय खोलता है, तो अर्जुन भगवान के सामने अपना हृदय खोल रहे हैं कि मेरे मन में ये सब विषाद हो रहा है, शोक से मैं संविग्न हूं और मुझे नहीं लगता ये युद्ध करना चाहिए। अर्थात अब तक अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान मानकर अपना हृदय नहीं सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे चल के आएंगे कि हां, तब शिष्य की भूमिका निभा रहे हैं और भगवान को एक गुरु की भूमिका दे रहे हैं अर्जुन। परंतु व्यासदेव जी हमें शुरुआत से ही बताना चाहते हैं कि अर्जुन के मन में ये जो श्री कृष्ण की तरफ भावना है वो हमारी नहीं होनी चाहिए। इसलिए शुरुआत से ही जो कुछ वो बोल रहे हैं वो सब उनकी भगवत्ता दर्शाते हुए उनके वाक्य हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद श्री भगवानुवाच उनके तात्पर्य में भी, इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद केवल भगवानुवाच इसी पर लंबा चौड़ा तात्पर्य लिखे हैं। अलग अलग उपनिषद पुराण इनमें से श्लोक लेकर, भगवान का उल्लेख लेकर कहे हैं कि कैसे भगवद गीता इज द मोस्ट बोनाफाइड स्क्रिप्चर, सबसे प्रामाणिक ग्रंथ क्यों है? क्योंकि ये किसी साधारण व्यक्ति का कोई बोल बचन नहीं है, ये स्वयं श्री भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। अब एक प्रश्न ये उठ सकता है कि श्रील प्रभुपाद जब इस्कॉन की प्रस्थापना उन्होंने की, तो प्रस्थापना के समय कई शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद को यह सुझाव दिया कि इस संस्था का नाम होना चाहिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। इज गॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। क्यों? क्योंकि वो श्रील प्रभुपाद को कहे ये कृष्णा तो किसी को समझ में नहीं आएगा यहां अमेरिका में। उस समय वो ये थोड़ी सोच रहे थे कि सबसे पहले तो जब प्रभुपाद ने कहा कि हमारी संस्था इंटरनेशनल सोसाइटी होनी चाहिए, तो वो एक दो कुछ गिने चुने शिष्य थे श्रील प्रभुपाद के उस समय न्यूयॉर्क, और वो भी हिप्पी, कोई काम धंधा नहीं। तो इसलिए बैठ जाते थे प्रभुपाद के छोटे से एक उनका स्टोर फ्रंट, वो देखा न्यूयॉर्क में स्टोर फ्रंट एक छोटी सी दुकान, और उस दुकान में श्रील प्रभुपाद इन एक दो हिप्पियों के साथ बैठे हुए, और प्रभुपाद कहते हैं कि हमको इंटरनेशनल सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना है। तो सभी एक दूसरे को दे इंटरनेशनल सोसाइटी, एक तुम हो एक मैं हूं और एक स्वामी जी है, इंटरनेशनल सोसाइटी। तो सबसे पहला डाउट उनको वो इंटरनेशनल वर्ड के ऊपर आ गया कि इंटरनेशनल वर्ड क्यों इस्तेमाल करना है यहां हम लोग। वो तो ये बोल रहे थे कि वो जो 26 सेकंड एवेन्यू न्यूयॉर्क का वो जो स्ट्रीट, वो स्ट्रीट से बाहर भी नहीं गए थे वो लोग प्रचार करने के लिए, और यहां पर प्रभुपाद रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं इंटरनेशनल सोसाइटी अंतरराष्ट्रीय। अब ये तो छोड़ दीजिए, एक व्यक्ति ये सब व्यक्तियों से मिलने से पहले जब श्रील प्रभुपाद अकेले थे न्यूयॉर्क में, अब तक कोई आया भी नहीं, कोई अपना समर्पण भी नहीं दिखाया है, और श्रील प्रभुपाद पार्क में बेंच पे बैठे, और वहां पे एक बूढ़ा व्यक्ति देखता है कि ये कोई भारतीय साधु जैसे कोई दिख रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद से पूछता आप कहां से हैं, यहां पे क्या कर रहे हैं। तो प्रभुपाद इनको क्या उत्तर देते हैं, हमारी अंतरराष्ट्रीय संस्था है और हजारों पुस्तकें वितरित होती हैं और 108 केंद्र है। तो देखिए 108 केंद्र, हजारों पुस्तकें वितरित हो रही हैं और इतने सारे शिष्य, और ये पार्क पर बेंच पे बैठे हैं से। उस समय श्रील प्रभुपाद, अब हम आपको धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद के मन में भगवान श्री कृष्ण को प्रस्थापित करने के लिए क्या क्या चल रहा था ये बता रहे हैं। सबसे पहले आपको बताया कि जब कुछ एक शिष्य एक दो आए तो प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा, उसके पहले ये सब कुछ नहीं था। तब पार्क में बैठे एक ऐसे ही अमरीकी वृद्ध व्यक्ति को बता रहे हैं कि इतने सारे केंद्र है, इतनी पुस्तकें वितरित हो रही, इससे पहले अमेरिका जाने से पहले भारत में श्रील प्रभुपाद बंबई में जब सुमति मुरारजी से मिलने गए, जलदूत वो मालवाहक जहाज, उसका टिकट कुछ फ्री टिकट मिल जाए अमेरिका जाने के लिए, वो भिक्षा मांगने के लिए गए, तो प्रभुपाद जो अभी जुहू मंदिर है, आप लोग कितने लोग देखे हैं जुहू का मंदिर, तो आप लोगों को एक अंदाजा आ गया होगा कि वो जुहू का मंदिर वो कितने प्रोमिनेंट जगह पे और कितना एक टूरिस्ट स्पॉट है बंबई का वो। और उस समय ये बात होगी 1964 की, और उस समय श्रील प्रभुपाद उस जुहू एरिया में से गुजर रहे थे, और उस समय जुहू का एरिया वहां पर पूरा वीराना जंगल था, जंगल वहां पर जंगल था। उस जगह पर श्रील प्रभुपाद गुजरते हुए श्रील प्रभुपाद ने मन में सोचा यहां पे एक बड़ा मंदिर होना चाहिए। 1964 में यहां पर एक बड़ा मंदिर होना चाहिए। राधा गोपीनाथ मंदिर गिरगांव चौपाटी पर जो है, श्रील प्रभुपाद एक कार्यक्रम के लिए भारतीय विद्या भवन आए जो बगल में ही है। भारतीय विद्या भवन से बाहर निकलते हुए जैसे ही श्रील प्रभुपाद ने देखा उस एरिया को, प्रभुपाद ने कहा यहां पर एक हमारा मंदिर होना चाहिए। रमन रेती वृंदावन, वो जगह आज आप यदि रमन रेती वृंदावन में जो इस्कॉन का मंदिर है कृष्ण बलराम वहां देखो, मैं वहां पर अभी कुछ हफ्ते पहले था, चलने की जगह नहीं कार्तिक के महीने में, रास्ते पर सुबह 4:10 की मंगल आरती, सुबह 4:10 की मंगल आरती में खड़े रहने की जगह नहीं। और ये सब ऐसा नहीं कि केवल इस्कॉन के ही भक्त, बाहर के कितने यात्री वहां पर जो आए हुए, और जब श्रील प्रभुपाद ने वो वहां का लैंड निश्चित किया, उस समय सभी लोग यही प्रश्न पूछ रहे थे, इतनी दूर इस वीराने में, इस जंगल में कौन आएगा दर्शन के लिए, इतना बड़ा मंदिर आप बनाना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने जब अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस नाम से रजिस्ट्रेशन किया इस संस्था का, और यहां पर आप देखो गीता में व्यासदेव जी भगवान उवाच, अर्थात भगवान को यदि अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो गॉड, तो प्रभुपाद ने फिर गॉड कॉन्शियसनेस ऐसी संस्था का नाम क्यों नहीं दिया? कैसे समझा जाए, क्या ये परंपरा के विरोध में है या परंपरा के अनुसार है? समझ में आ रहा है आपको? ये श्लोक शुरू हो रहा है भगवान उवाच से, और प्रभुपाद ने प्रस्थापना की। इसे यहां पर बताया गया है तात्पर्य में कि पूरी भगवत गीता में कहीं पर भी श्री कृष्ण उवाच नहीं, तो श्रील प्रभुपाद ने फिर इस्कॉन में कृष्णा कॉन्शियसनेस ये नाम क्यों दिया? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हाँ, बट इट सीम्स आई एम मोर कंफ्यूज नाउ आफ्टर श्री भगवान उवाच। कलयुग में कोई भी भगवान बन जाएगा, वो तो कृष्ण भी बोलते हैं, वही भगवान कृष्ण मैं हूं, बांसुरी भी ले लेते हैं हाथ में। देखिए यहां पर यह समझना होगा कि लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई है ना, लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, इसलिए व्यासदेव जी ने भगवान शब्द इस्तेमाल किया। और श्रील प्रभुपाद ने एक आध्यात्मिक संस्था भगवान को ही समर्पित शुरू की, तो लोग पूछेंगे कि कौन है वो भगवान? श्री कृष्ण। समझ में आया अभी? तो श्रील प्रभुपाद ऐसे ही नहीं कि मन में आया चलो ये नाम हो, जैसे व्यासदेव जी और संजय इन्होंने सोच विचार करके, क्योंकि सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाए, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि वो भगवान हैं, और इसलिए आध्यात्मिक संस्था तो बहुत लोग खोल चुके हैं भगवान के नाम पर, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण है। इसलिए दोनों में विरोधाभास नहीं है, व्यासदेव जी और श्रील प्रभुपाद ये दोनों संप्रदाय परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण को भगवान का पद दे रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण हैं इसे उद्धृत कर बता रहे हैं। तो ये बहुत आवश्यक है जानना। अब हमने इसकी व्याख्या तो बहुत की है, सुनी है, श्री भगवान उवाच, परंतु आज हम विशेष हमारे आचार्यों के पदचिन्हों पर चलते हुए श्री भगवान या भगवान इस शब्द पर ज्यादा जोर देंगे, ये गौर करेंगे। भगवान श्री कृष्ण स्रोत हैं संपूर्ण सृष्टि के, और इसका उल्लेख कहां है? भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के स्रोत हैं, इसका उल्लेख कहां पर है? गीता में ही है, दसवें अध्याय में गीता में ही भगवान कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण सृष्टि, जो भी जड़ चेतन वस्तुएं हैं, सब का स्रोत मैं हूं। इसके पश्चात भगवान को भगवान इसलिए कहा जाएगा, न केवल वो पूरी सृष्टि के स्रोत हैं, परंतु सभी जीवात्माओं के भी, हम सभी के स्रोत, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, इसलिए वो भगवान है। इसके पश्चात कोई पूछे कि खैर हम तो बद्ध जीव हैं, हम तो भौतिक संसार में ये जो 33 करोड़ देवता जिनकी पूजा इतनी होती है इस पृथ्वी पर, इन देवताओं की पूजा, तो क्या ये भगवान नहीं? भगवान इनके भी स्रोत हैं। कई बार इनको भी भगवान बोला जाता है, जैसे भगवान शिव जी। हालांकि भगवान शिव जी कोई देवता नहीं, वो तो स्वयं विष्णु के ही अंश है, स्वयं विष्णु के ही एक स्वरूप है। परंतु 33 करोड़ जो देवता हैं उनके भी स्रोत भगवान हैं। अहम आदिर ही देवानाम, भगवान कहे इसी गीता में। अर्थात श्री भगवान उवाच या श्री भगवान सिद्ध हुए हैं गीता में, यह समझने यहां पर बहुत आवश्यक है कि हालांकि अन्य इतने उपनिषद और पुराणों में भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या भगवान के रूप में हुई है, परंतु यहां पर हम गीता में ही पढ़ें तो जो गीता के स्पीकर हैं, प्रवक्ता हैं, उन्हीं की भगवत्ता उसी गीता में उनके मुख से हम सुन रहे हैं और उन्होंने दिखाई भी। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण सारे विष्णु अवतारों के भी स्रोत हैं, जो कि बहुत कम समझा जाता है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण सभी विष्णु अवतारों के स्रोत है। एते च अंश कलह पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सारे जो अंश और कलह अवतार भगवान के हैं, और भगवान ने अपने ब्रह्म विमोहन लीला ब्रह्मा जी इनको दिखा दिया। ये जो चित्र आप देख रहे हैं जिसमें ग्वाल बाल श्री कृष्ण, वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण वो दिखा रहे हैं कि इतने सारे जितने भी विष्णु हैं, अलग अलग प्रकार के विष्णु, अनगिनत विष्णु इनके अवतार हैं, उन सब के स्रोत स्वयं श्री कृष्ण, इसलिए वो भगवान हैं। अब श्रील प्रभुपाद ने, बलदेव विद्याभूषण और हमारे अन्य आचार्यों ने ये जो श्लोक आज हम लिए हैं, इस श्लोक की टीका में इन सभियों ने ये श्लोक विष्णु पुराण से पराशर मुनि द्वारा कहा गया। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रिय ज्ञान वैराग्ययश्चैव शन्नं भग इतिंगण। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें भगवान की परिभाषा दी गई है कि भगवान किसे कहते हैं। हम बहुत बार सुने हैं ये जो 6 ऐश्वर्य हैं, जो इन 6 ऐश्वर्यों को धारण करता है वही भगवान कहलाने योग्य। भग का अर्थ है ऐश्वर्य, वान का अर्थ है जो उसे धारण करता है। श्रील प्रभुपाद ये उदाहरण दिया करते थे, कोई धन को धारण करता है उसे कहते हैं धनवान, कोई शक्ति को धारण करता है उसे कहते हैं शक्तिवान, जो शील को धारण करता है शीलवान चरित्रवान। उस प्रकार से ऐश्वर्यों को धारण करे, विशेष रूप से ये 6 ऐश्वर्य, संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, वैराग्य, ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य। अब हर बार ये संपूर्ण शब्द इस्तेमाल किया गया है क्योंकि देवताओं में भी, 33 करोड़ देवताओं में भी, उनमें ऐश्वर्य, यश, सुंदरता ये सब कुछ देखी जाती है, परंतु संपूर्ण तरीके से नहीं देखी जाती। अच्छा, किसी में संपूर्ण तरीके से हो भी परंतु बाकी नहीं एक साथ उसके अंदर वो गुण आ सकते, तो ये 6 गुण एक साथ संपूर्ण तरीके से किसी में पाए जाएं वही भगवान। जैसे कि हम गोवर्धन पूजा के दिन चर्चा कर रहे थे कि ये जो एक परिभाषा विष्णु पुराण में भगवान की दी गई है, केवल इस एक परिभाषा से इन कलयुग के ढोंगी भगवानों का पर्दाफाश किया जा सकता है, केवल वो उस एक परिभाषा से। ऐसा नहीं कि भगवान के केवल 6 ऐश्वर्य हैं, ये नहीं सोचना चाहिए। कितने हैं ऐश्वर्य भगवान के? अनगिनत, भगवान के अनगिनत ऐश्वर्य हैं। उनमें से ये छह ऐश्वर्य जो, क्योंकि हम इनको समझ सकते हैं, जब हम देखते हैं कोई धनवान व्यक्ति को, कोई ज्ञानवान व्यक्ति को, तो हम उसके उस ऐश्वर्य से आकृष्ट हो जाते हैं। इसलिए विष्णु पुराण में विशेष रूप से हम कलयुग निवासियों की जो बुद्धि है उस बुद्धि में ये बात घुस सके, इसलिए छह ऐश्वर्य निम्नलिखित दिए हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ भगवान कृष्ण के केवल छह ऐश्वर्य, नहीं, अनगिनत ऐश्वर्य हैं, परंतु विशेष हैं ये छह। तो आज एक एक कर हम इनकी चर्चा करेंगे, देखेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने एक एक ऐश्वर्य को संपूर्ण तया प्रदर्शित कर दिखाया। सबसे पहले संपूर्ण धन। अब इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति बहुत धनवान होगा और वो इतना धनवान होगा कि उसके संपूर्ण जीवन को ऐशो आराम से जीने के लिए उसके पास इतना धन है कि बोल सकता है कि वो व्यक्ति की, हाँ बोलते हैं ये दिस इज द रिचेस्ट पर्सन। वो जैसे अमेरिका में वो बिल गेट्स करके एक व्यक्ति हैं जो कि बहुत धनवान जिन्हें लोग मानते हैं, और बिल गेट्स के विषय में कहा गया है कि बिल गेट्स के पॉकेट से यदि एक $100 गिर जाए, ऐसा गलती से, कितना $100 कितना पैसा होता है, तकरीबन 5,000, 4,500, 5,000। तो यदि उसके पॉकेट से यदि $100 गिर जाता है, अर्थात हमारा 5,000 रुपया गिर जाता है, 4,500 रुपया गिर जाता है, तो वो यदि उसको नीचे उठाने के लिए रुकता है तो वो घाटे में, एक उसका ऐश्वर्य बताया गया कि वो घाटे में जाएगा, क्योंकि उतना समय वो जो निकालेगा उसको रोकने के लिए, उठाने के लिए, उतने समय में वो और $1,000 कमा सकता है। तो बहुत लोग आगे पीछे घूमते रहते हैं कुछ गिर जाए। तो यहां पर एक मृत्यु लोक का जीव जो कि भौतिक शरीर, और ये सब पैसा वो कभी अपने साथ लाया नहीं, नंग धड़ंग पैदा हुआ, एक वस्त्र भी नहीं अपने ऊपर, और वो जाने भी ऐसे ही वाला है सब कुछ छोड़ के यहां पे। परंतु देखिए लोग कैसे ऐसे व्यक्ति का गुणगान करते हैं, क्यों? इसके अंदर ये एक ऐश्वर्य है, धन, इसके पास इतना धन है। तो यदि भगवान को संपूर्ण धन अन कहा जाता है तो कैसे भगवान ने इसको प्रदर्शित किया? सबसे पहले ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी, अब ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी के वाक्य हैं, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान का जो निज धाम है वो चिंतामणि, और ये संसार चिंता फॉर मनी, भगवान का संसार है चिंतामणि। कौन जानता है चिंतामणि किसे कहते हैं? बंबई में एक ने अपनी दुकान खोल रखी, चिंतामणि ज्वेलर्स। चिंतामणि एक ऐसा रत्न है कि वो रत्न लोहे को सोना बना दे, जिसे संस्कृत में पारसमणि भी बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद चिंतामणि और पारसमणि दोनों इन शब्दों को एक साथ बोला करते थे। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का निज धाम वो चिंतामणि से बना हुआ है। अब यहां पर देखिए, ईंट पत्थर का कोई किसी का बंगला होगा, वो ईंट पत्थर का बंगला लोग करोड़ों की कोठी है, यदि उसको थोड़ा सा खरोच कर अंदर देखा जाए तो केवल सीमेंट गिरता है, लोहे की सलाखें अंदर, वो ईंट पर लगाओ किसी लोहे को, बनता है सोने में, सोने में परिणित होगा। तो भगवान का जो धाम है गोलोक वृंदावन धाम, वहां पर न तो कोई ईंट, न कोई लोहा, न मिट्टी, ब्रह्मा जी के अनुसार वो पूरा धाम बना हुआ है चिंतामणि, चिंतामणि से बना हुआ है पूरा धाम। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति के धनी होने के ऐश्वर्य को उसके रहने के स्थान से भी पता लगाया जा सकता है, उसके निवास स्थान से। अब मान लीजिए कि आप पूछें मिस्टर बिरला या मिस्टर अंबानी ये बंबई में कहां रहते हैं, तो आपको कोई एड्रेस लिख के दिया, धारावी गली नंबर 16 झोपड़ी नंबर 20 मिस्टर अंबानी, तो एड्रेस देख के क्या सोचेंगे आप। लेकिन यदि कोई अंबानी भी नहीं है लेकिन एड्रेस है मलबार हिल, ऐसे उसके बगल में किसके, वो समुद्र के बगल में नेपेंसी रोड और क्या मरीन ड्राइव, अभी वहां पर भिखारी भी सोते रहते हैं उधर ही, उनको पूछो तुम्हारा एड्रेस क्या है, मरीन ड्राइव। तो किसी के एड्रेस से पता लगता है कि हाँ, जैसे यहां पर भी मेरे ख्याल से नासिक में कोई किसी का कोई एड्रेस होता है, वैसे जैसे मैं लंदन में एक देखा, वहां पर एक लोकेलिटी है जहां पर कोई भी ऐरा गहरा मकान नहीं ले सकता, यदि आपके पास पैसे भी हो तो भी आप वहां पर मकान नहीं खरीद सकते, मतलब इतना एक तो महंगा वहां के वहां उस एरिया का मकान। लेकिन आपका एक रेपुटेशन होना चाहिए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो मकान खरीदेगा वो अपना एड्रेस देगा कि वो किसके बगल में रह रहा है, तो उसका एक नाम है कि मैं इसके बगल में रहता हूं, ये मेरे बगल में, ये इसी एरिया में, तो ऐसा कोई आलतू फालतू नहीं होना चाहिए मेरे बगल वाला भी, यहां बगल वाले की चिंता चल रही है ज्यादा। जैसे बंबई में वो रोल्स रॉयस गाड़ी का शोरूम खोला गया है, ये जो रोल्स रॉयस गाड़ी है ये करोड़ों में ये गाड़ी बिकी जा रही है, परंतु कोई भी यदि किसी के पास 10 करोड़ भी हो गाड़ी खरीदने के लिए, फिर भी उसको गाड़ी नहीं मिलेगी, उसको दिखाना होगा कि उसका मार्केट में रेपुटेशन क्या है, सोसाइटी में उसका नाम कितना है, पैसों से नहीं केवल खाली, क्यों, क्योंकि कोई पूछेगा तुम्हारा रोल्स रॉयस गाड़ी कौन खरीदा और कहां पर पार्क है वो, रोल्स रॉयस गाड़ी यदि धारावाहिक के सामने पार्क है तो उनका नाम खराब होगा। इसलिए यदि कोई धारावाहिक का व्यक्ति भी करोड़पति बन जाता है जुआ खेल खेल के, तो उसको भी वो रोल्स रॉयस गाड़ी नहीं मिल सकती जब तक कि वो सिद्ध नहीं करता कि वो किसी स्टैंडर्ड का है। तो यहां पर ब्रह्मा जी भगवान का स्टैंडर्ड बता रहे हैं, सबसे पहले उनके धाम का स्टैंडर्ड बताते हुए कि चिंतामणि रत्नों से जड़ित भगवान का धाम। कल्प वृक्ष, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है ऐसे यहां वहां बस लगा दिए किसी ने। ये कल्प वृक्ष का अर्थ है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर कोई भी व्यक्ति कुछ भी इच्छा करे वो उसकी इच्छा पूरी हो जाए। जैसे वृंदावन में एक व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे बैठा, वो इच्छा किया उसने, भूख लगी है, अरे अच्छा रबड़ी पूड़ी कहीं आ जाए खाने के लिए, तुरंत सामने रबड़ी और पूड़ी, जबरदस्ती तो खाली सुना था कि ऐसे कल्प वृक्ष होते, अब रबड़ी पूड़ी सामने, तो रबड़ी पूड़ी खा ली, यहां पे एकदम नरम पलंग आ जाए सोने के लिए, तो एकदम नरम पलंग आ गया तुरंत, अब रबड़ी पूड़ी के बाद होगा क्या, सोएगा। और फिर जैसे ही सोने गया तो उसके मन में एक छोटी सी इच्छा हुई, कहीं यदि शेर आ गया तो, तथास्तु। तो फिर सारी रबड़ी पूड़ी और पलंग शेर भी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है, भगवान देखिए, भगवान का स्वरूप, भगवान का धाम, भगवान का नाम, उनमें कोई अंतर नहीं। तो भगवान का नाम भी कल्पवृक्ष चिंतामणि के समान, इसलिए नाम लेते समय भी हमें सावधान रहना चाहिए कौन सी इच्छा हम कर रहे हैं, क्योंकि जो नाम है वो यदि कोई भौतिक इच्छा मन में रखा है तो जो नाम है वो भौतिक इच्छा पूरा कर देगा, लेकिन वो भगवान का धाम नहीं मिलेगा, क्योंकि भौतिक इच्छा में क्या है, रबड़ी पूड़ी पलंग के बाद शेर, ये भौतिक संसार। तो आध्यात्मिक संसार में वहां पर जैसे यहां पर आपको कुछ खरीदना हो तो कितनी बड़ी बड़ी दुकानें खोल रखी है लोगों ने, बिग बाजार, पहले केवल बाजार, अभी बिग बाजार हो गया, अभी महा बिग बाजार आएगा कुछ समय बाद, जैसे वो बंबई में हाइपर सिटी खोल रखा है पहले आजकल, कि लोग इतने हाइपर हो गए कि और सामग्री खरीदनी है। तो इतने बड़े बड़े स्टोर हैं, दुकानें हैं, ये मानो पूरा साम्राज्य, इतनी बड़ी बड़ी वो दुकानें होती हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि कुछ खरीदना है तो वहां पर कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो उसको बनाते हैं, फिर उसका ट्रांसपोर्ट कहां से कहां तक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, कि आप ये सारे बड़े बड़ी दुकानों में जाओ कि पाश्चात्य देश से सामान आए, मेड इन ये मेड इन वो। उधर अमेरिका में एक व्यक्ति वो ये वॉलमार्ट करके बहुत बड़ी दुकान है, उसको दुकान भी नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग दुकान सोचते थे एक बस वो शटर बंद किया वैसे वैसी दुकान, उसको दुकान भी नहीं बोल सकते, वो पूरा साम्राज्य है वो। तो वहां पर लेके गया तो वहां पे मेरे को उसने एक टी शर्ट दिखाई, वो टी शर्ट देखा मेड इन इंडिया, ये मेड इन इंडिया वो सब वहां बना बना के यहां भेजते हैं, और फिर यहां पर वो लोग सब देखते हैं कि हमारे लिए, हम अमरीकी लोगों के लिए पूरा एक देश लगा हुआ है एक कपड़ा बनाने के लिए, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन इंडिया, और यहां पर मेड इन यूएसए। यहां पर आप यदि कोई कहे मेड इन इंडिया तो नहीं, वो मेड इन अगर कोरिया भी हुआ चलेगा, श्रीलंका भी हुआ नीचे चलेगा, इंडिया नहीं होना चाहिए, भूटान भी चलेगा, बर्मा भी चलेगा। तो आध्यात्मिक संसार में वहां पर ये कोई दुकान उकान नहीं खोली गई, अरे आज दूध दिया नहीं पैकेट का दूध लेके आओ, माखन नहीं है, कुछ खत्म हो गया तो दुकान से कुछ खरीद के लेके आओ। वहां पर कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर किसी ने भी कुछ भी इच्छा की वो तुरंत वो इच्छा पूरी हो जाती। और उसके साथ सुर भी गाए, ये कॉम्बिनेशन देखिए, चिंतामणि, चिंतामणि से बना हुआ धाम, कल्प वृक्ष से पूरा धाम लदा हुआ और सुरभि गायों से भरा हुआ। सुरभि गाय जिसको कामधेनु गाय भी बोलते हैं, कि केवल दूध नहीं निकलता वो गायों से, यदि किसी को इच्छा हुई कि मुझे आज आम रस पीना है तो गाय के थनों से आम रस निकल सकता है, मतलब मैंगो मिल्क शेक, केवल मिल्क नहीं, मैंगो मिल्क शेक मिल सकता है। तो काम धेनु गाय और कल्प वृक्ष और चिंतामणि धाम, एक विद्यार्थी को मैं बता रहा था ब्रह्म संहिता के ऊपर मैं कुछ श्लोकों को लेकर एक प्रवचन दे रहा था, तो ये सब कुछ मैंने जब बताया तो विद्यार्थी पूछता है अरे ये सब इधर होना चाहिए ना, क्योंकि ये सब जिस धाम में वहां पर किसी को भौतिक इच्छा ही नहीं है, तो फायदा क्या वहां पे रख के, इधर रखना चाहिए, इतनी इच्छा सब लोगों की, तो ये अगर मुझे एक वैसी गाय मिल जाए, एक ऐसा पेड़ मेरे बागीचे में लग जाए तो फिर चांदी चांदी सोना ही सोना। इसलिए भगवान देखिए ऐसे जगह पर चिंतामणि कल्प वृक्ष और सुरभि गाय रखे हैं जहां पर किसी को कोई इच्छा नहीं स्वयं के भोग की, वहां पर लोग कल्प वृक्ष और सुरभि गाय इनका इस्तेमाल करते हैं केवल भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए, खुद की कोई सेवा की कोई खुद की कोई भौतिक इच्छा की पूर्ति करने के पीछे नहीं लगा हुआ। तो यहां पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भगवान के धनी होने का ऐश्वर्य कैसे समझ में आता है उनके धाम से। फिर अब देखिए वहां पर सेवा, वहां पर सेवा कौन कर रही है, श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि वैकुंठ में लक्ष्मियां झाड़ू लगाती हैं। सोचिए लक्ष्मियां झाड़ू लगा रही हैं वैकुंठ में, और वो भी एक नहीं दो नहीं सहस्त्र सहस्त्र लक्ष्मियां। अब देखिए इस भौतिक संसार में किसी के ऊपर लक्ष्मी की इतनी सी कृपा हो जाए, इसलिए कितना बड़ा बड़ा पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी मैया दे दे मुझे रुपैया, देऊं तुझे सेवैया, तो ऐसे मंत्र बोल बोल के, और उनको लक्ष्मी देवी, एक लक्ष्मी देवी बस कुछ थोड़ी सी कृपा कुछ समय के लिए कर, मतलब चवन्नी अठन्नी ऐसे फेंक दिया बस ले, और वो भी रस्सी अटका के कि कुछ समय के लिए खेल इसके साथ चवन्नी अठन्नी के साथ। तो ये जो ये बड़े बड़े है ना बिल गेट्स और बिरला टाटा ये सारे, इनके ऊपर हाँ लक्ष्मी देवी की कृपा है, चवन्नी अठन्नी के समान एक लक्ष्मी देवी चवन्नी अठन्नी फेंकी है बस। और यहां पर सहस्त्र लक्ष्मियां वो भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार से नित्य सेवा में लगी, और वो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में माखन चोरी करते हैं। ये जो सहस्त्र लक्ष्मियों के पति हैं वो माखन की चोरी कर रहे हैं, तो उसमें भगवान हम आगे देखेंगे उसमें भी भगवान का एक ऐश्वर्य दिखा रहे हैं वो। तो सहस्त्र लक्ष्मियों द्वारा सेवित वो धाम वो भगवान क्यों नहीं वो संपूर्ण धनवान होंगे। और फिर द्वारका का ऐश्वर्य, यहां तक कि नारद मुनि भ्रमित हो गए जब नारद मुनि ने यह सुना कि भगवान ने द्वारका में 16,108 महल एक ही रात में खड़े कर दिए, एक रात में। अब यहां पर देखिए एक एक छोटी सी खोली बनाने के लिए लोगों को कितने महीने लग जाते हैं। यहां पर 16,108 महल, और वो सब महल ईंट पत्थर से नहीं बने होंगे, वैसे ही चिंतामणि एक रात में। और एक एक पटरानी के लिए भगवान ने एक एक महल बनाया। और नारद मुनि आश्चर्यचकित हुए तो वो स्वयं आकर देखना चाहते थे कि ये कैसे संभव हुआ और भगवान कैसे अब 16,108 रानियों के साथ कैसे विहार करते हैं। क्योंकि देखिए नारद मुनि एक सन्यासी हैं, तो उनको ये आश्चर्य होना बहुत स्वाभाविक है कि कैसे हो सकता है। और जब वो आके ऐश्वर्य देखे द्वारका का, कि द्वारका द्वारकाधीश का जो महल स्वयं, जहां पर राजमहल भगवान का, वो राजमहल सुधर्मा महल जिसे कहते हैं, वो सुधर्मा महल ऐसा कि भगवान खैर भगवान तो वहां पर विराजित रहते ही थे, कोई भी उसमें प्रवेश करता है सुधर्मा महल में तो उसकी भूख प्यास मिट जाती है, भूख प्यास मिट जाती है। कोई व्यक्ति यदि ठंड महसूस कर रहा है तो उसके लिए हीटर चालू होता है, और कोई व्यक्ति यदि बहुत गर्मी महसूस कर रहा है तो उसके लिए एसी चालू। अब ऐसा यहां पे किसका महल होगा, ऐसे कितने भी बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली व्यक्ति को ले लीजिए, उनके ऑफिस में या तो हीटर चालू है या फिर एसी चालू है। तो या तो आप ठंड में ठिठुरते रहो वहां पर, या गर्मी में जलते रहो। परंतु भगवान का ये एक महल सुधर्मा वहां पर, अब कई बार हम सोचते हैं कि हमारे इस्कॉन का एक मंदिर ऐसा हो जाए तो किचन डिपार्टमेंट को कोई तकलीफ नहीं, कि कोई घुसते ही भूख प्यास चली गई। तो कई बार लोग बाहर ही खड़े रहेंगे कम से कम कुछ खाने मिलेगा, परंतु खाया किस लिए जाता है, भूख प्यास दूर करने के लिए। तो ये भगवान के द्वारका का केवल ऐश्वर्य, और ये भौम द्वारका इस भौतिक संसार में। कृष्ण जन्म, कृष्ण जन्मते ही भगवान ने ऐश्वर्य अपना दिखा दिया। कौन सा ऐश्वर्य? ये पहला संपूर्ण धनवान होने का ऐश्वर्य। पैदा हुए तो पूरे अलंकार के साथ, पूरा आभूषण, रत्न जड़ित शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारी भगवान उस प्रकार से अवतरित हुए। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग जब पैदा होते हैं तो रोते हुए बिलखते हुए और कुछ पता नहीं खुद कौन है, कुछ मालूम नहीं, ऐसे ही निर्वस्त्र पैदा हुए। परंतु भगवान पैदा होते ही पूरे अलंकार के साथ, इसलिए भगवान ने दिखाया कि भगवान का ये धनवान होने का ऐश्वर्य भगवान कहीं से प्राप्त नहीं करते, अपने साथ लाते हैं। यहां पर इस भौतिक संसार में कोई धनवान होने का ऐश्वर्य यहां पर पैदा करता है और यहीं छोड़ के जाता है, परंतु भगवान अपना पूरा धाम लेकर आए और धाम लेकर गए। उससे भगवान ने दिखाया कि वो संपूर्ण धनवान है, उनकी संपत्ति न तो उत्पन्न होती है न खत्म होती है, इसलिए वो संपूर्ण धनवान है। अब ये दूसरा ऐश्वर्य संपूर्ण बल, इस लीला से ही हम देखते हैं कि भगवान ने अपना संपूर्ण बल कैसे दिखाया। परंतु इसके अलावा हम और भी जो मुद्दे भगवान ने सिद्ध किए अपने संपूर्ण बलवान होने के, गोवर्धन धारण में तो अपना शारीरिक बल भगवान ने दिखाया ही, इतने विशाल पर्वत को भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली में उठाए रखा 7 दिन 7 रात। और ऐसा नहीं कि भगवान पसीना पसीना हो रहे थे और कैसे तो 7 दिन 7 रात उठा लिया उसे, भगवान लीला कर रहे थे 7 दिन 7 रात अन्यों के साथ। गोवर्धन पूजा में उस दिन मैं बोलना भूल गया, भगवान उठाए हुए हैं, वो जो हमने अभी चित्र देखा, अपने बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पर गोवर्धन उठाए, और भगवान अचानक अपने दाएं हाथ से बांसुरी निकाले और बांसुरी बजाना शुरू की। अब देखिए बांसुरी भी कोई व्यक्ति दोनों हाथ से ही बजा सकता है ठीक से। भगवान बांसुरी एक हाथ से बजा सकते हैं और कैसे भी बजा सकते हैं, उल्टा सीधा कहीं से भी। तो भगवान ने, अब कोई व्यक्ति, ये जो मैं बता रहा था, ये वेट लिफ्टर होते हैं ओलंपिक के, ये जब अपना वो पूरा उठा उठाए हुए ऊपर वेट, उनको एक बांसुरी तो बजाओ, थोड़ा बांसुरी बजाओ। अरे उनको तो छोड़ दो, उनके सामने जाके कोई बांसुरी बजाना शुरू करेगा तो उसको उसके ऊपर पटक देगा। यहां भगवान उठाए और बांसुरी बजा रहे, तो सारे ब्रजवासी वो डर गए। वो भगवान से कहे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, बांसुरी मत बजाओ। क्यों बांसुरी मत बजाओ? क्योंकि भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो जो पत्थर है वो पिघल जाते हैं और जो यमुना है वो पत्थर बन जाती है। भगवान की बांसुरी का इफेक्ट देखिए। तो इसलिए वो बोल रहे थे पहले से बाहर इतनी बाढ़ आई हुई है संवर्तक बादलों के कारण, आप बांसुरी बजाओगे तो ये ऊपर वाला गोवर्धन पिघल के ये भी और बाढ़ में बाढ़ लाएगा। तो भगवान गोवर्धन धारण के समय अपना बल इस प्रकार से, जैसे कई बार आप देखो, कई बार लोग बोलते हैं ना अपनी शारीरिक बल के विषय में प्रदर्शन करते हुए बोलते हैं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है ना, बाएं हाथ का खेल। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग दाएं हाथ से काम करते हैं, इसलिए बोलते हैं बाएं हाथ का खेल है। अभी लोग, हो सकता है, एक बार मुझे एक व्यक्ति पूछ रहा था, भगवान कृष्ण लेफ्टी है क्या? लेफ्टी लेफ्ट हैंड से ज्यादा काम करते हैं भगवान का, कोई ऐसा नहीं लेफ्ट हैंड राइट हैंड। भगवान के हरेक अंग, अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मन्ति, भगवान का हरेक अंग, हम चर्चा करेंगे कि भगवान गोवर्धन अपने होठों से भी उठा सकते थे, भगवान गोवर्धन अपने किसी भी अंग से उठा सकते थे, पलकों से भी उठा सकते थे भगवान, आप आंखों के पलकों से भी गोवर्धन उठा सकते थे। तो इसलिए भगवान ने अपने बाएं हाथ की छोटी सी उंगली क्यों इस्तेमाल की? क्योंकि भगवान दिखाना चाहते थे कि इस भौतिक संसार में लोग ये बोलते ना बाएं हाथ का खेल, भगवान मेरे ठीक है, मेरे बाएं हाथ का नहीं, बाएं हाथ की छोटी सी उंगली का खेल, 10 कदम आगे। तो गोवर्धन धारण, दामोदर लीला में भगवान ने अपना बल कैसे दिखाया? इतने विशाल ये अर्जुन वृक्ष जो सदियों से खड़े हुए, उनकी जड़ें इतनी जो ये, हरे कृष्ण जो उखल बंधा हुआ, और भगवान ने केवल एक थोड़ा छोटा सा झटका दिया और ये दोनों अर्जुन वृक्ष नीचे उसी क्षण गिरे, जड़ सहित बाहर आकर। ऐसा नहीं कि भगवान ने अपनी किसी शक्तियों को बोला कि थोड़ा आधा काट के रखना उसे, मैं आऊंगा अटकाऊंगा थोड़ा, फिर थोड़ा झटका दूंगा ना तो फिर गिरना चाहिए, ऐसे फ्लॉप शो नहीं होना चाहिए। वो पूरे इतने सदियों से उनकी जड़ें अंदर गई हुई। तो दामोदर लीला में भगवान ने अपना शारीरिक बल दिखाया। पूतनावध, भगवान 6 दिन के, केवल 6 दिन का बालक, और 6 दिन के बालक के अंग कितने कोमल होते हैं, और विशेष रूप से होंठ, चाहे वो बालक 100 वर्ष का हो जाए होंठ उतने ही कोमल होते हैं हर समय। ये होंठ से हम क्या कर सकते हैं शारीरिक रूप से, किसको क्या मार सकते हैं, परंतु भगवान ने पूतना का वध किया और किसी अंग को इस्तेमाल नहीं है, केवल होठों से। और इतनी विकराल राक्षसी, इतनी बड़ी भयानक ये राक्षसी, इस राक्षसी का वध भगवान ने केवल अपने
होठों, और इस भौतिक संसार में भगवान अपना बल दिखाते हैं काल के रूप में। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हिटलर हो, कितना भी बड़ा लेनिन, स्टालिन, नेपोलियन, कोई भी बड़ा बड़ा अलेक्जेंडर हो, पोरस, जो भी हो, सब काल के सामने धराशाही। और काल के भी काल वो हैं भगवान श्री कृष्ण, इसलिए वो संपूर्ण बलवान, संपूर्ण यश। अब देखिए, ये एक भगवान का बहुत ही विशेष ऐश्वर्य है, यशस्वी। इस भौतिक संसार में लोग कितना यशस्वी बनना चाहते हैं, फेमस बनना चाहते हैं। बंबई में तो एक व्यक्ति ने चोरी शुरू कर दी कि कम से कम चोरी के बहाने तो पेपर में आएगा मेरा नाम। किसी न किसी प्रकार से वो बनना चाहता था। जैसे मैं बता रहा था, एक खूंखार गुंडा बंबई का, वो प्रसिद्ध हुआ सलीम कुत्ता, सलीम कुत्ते के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और पेपरों में सलीम कुत्ता, न्यूज में सलीम कुत्ता। कुछ वर्ष पहले वो फेमस इसलिए हुआ कि पुलिस ने इसे पकड़ा और कुत्ते के समान पुलिस को काट के भागा, ये तो पेपरों में आ गया इसका नाम सलीम कुत्ता। तो लोग कुत्ते के समान कोई किसी को काट रहा है, भौंकना शुरू कर देता है तो पेपरों में आ जाता है, इसने कुत्ते की जैसे भौंका। कोई मुझे बता रहा था टीवी में आजकल ये लोग करते हैं क्या मिमिक्री, कोई कुत्ते की आवाज निकाल रहा है, असली कुत्ते को कोई सुनता नहीं। वो लोग भी सोच रहे हैं, अरे हम ओरिजिनल भौंक रहे हो, मैं मेरे को सुनो, उसको पत्थर मारते हैं, वो ओरिजिनल कुत्ते को पत्थर मारेंगे, और ये आदमी जो कुत्ते के समान भौंक रहा है इसकी टिकट खरीद के देखेंगे इसको। तो यहां पर भगवान का यश यदि हम देखें तो भगवान उस प्रकार से ऐसे काम करने के लिए, अपना यश बढ़ाने के लिए नहीं, परंतु सबसे पहले देखें स्वर्ग लोक में जो श्रीमद् भागवत है, 100 करोड़ श्लोकों का श्रीमद् भागवत है स्वर्ग लोक में। यहां पे आपको पता है हमारे लिए जो भागवत दिया है वो कितना है, केवल 18,000। तो कई बार हम जो बोलते ना केवल 18,000, तो केवल 18,000, जब ये पढ़ेंगे हम तब समझ में आया कि हाँ केवल 18, अच्छा है 18,000 ही दिया। तो मान लो कि हमारे लिए भक्ति शास्त्री का टेस्ट हुआ, भागवत स्वर्गलोक की भागवत दी गई 100 करोड़ श्लोक, भक्ति शास्त्री टेस्ट। क्यों 100 करोड़ श्लोक हैं श्रीमद् भागवत के स्वर्गलोक में? क्योंकि भगवान का यश इतना वो लोग जानते हैं, हम तो केवल भगवान जो 5,000 वर्ष पूर्व आकर भौम वृंदावन में जो उन्होंने कुछ 125 वर्ष लीलाएं की, बस उतना कुछ यश थोड़ा जानते, वो भी लोग जानते ही नहीं। जैसे हमारे मुंबई में ये गोविंदा रेस्टोरेंट है, वहां पे हमारे नए नए बने हुए भक्त ही कुक हैं, तो उनकी क्लासेस होती है। तो एक बार गौरांग प्रभु उनकी क्लासेस ले रहे थे, तो उनको पूछे कि बताओ वृंदावन कहाँ है, तो सभी देखने लगे वृंदावन कहाँ है। तो उन्होंने ऑप्शन रखा बैंगलोर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो एक ने बैंगलोर, क्यों? क्योंकि उधर वृंदावन गार्डन है ना वो। तो ये पूछा गया, तो एक को वो एक आया नहीं, तो उसको पूछा कि बताओ कहाँ है, अफगानिस्तान में है या भारत में? तो वो डाउट में था। हम लोग की ये स्थिति है भारत में कि लोगों को पता ही नहीं वृंदावन किधर है, मथुरा किधर है, भगवान आए वहां पे। कई बार लोग भगवान श्री कृष्ण कहाँ अवतरित हुए, तो सबसे पहले प्रश्न ये हुए थे क्या? मुझे याद है बचपन में हम जिस कॉलोनी में पले बड़े, तो वहां पर हर साल ये अंताक्षरी का एक कार्यक्रम होता था। वो पूरी कॉलोनी आती स्टेज पे, सभी जो भी गायक जो भी यहां वहां के बाथरूम के अंदर के बाहर के सभी आके गाते थे। तो आप लोग सब जानते हैं अंताक्षरी में कोई व्यक्ति गाना शुरू करता है, फिर उसके अंतिम अक्षर को लेकर वो दूसरा शुरू करता है गाना। तो एक व्यक्ति गाया कुछ तो, और उसका अंतिम अक्षर र पे समाप्त हुआ। तो अब इसे र से शुरू करना है गाना, तो इसने शुरू किया, राम तेरी बंसी बजाए। वो कोई गाना है ऐसे? अब वो गाना है श्याम तेरी बंसी, तो यहां रामचंद्र जी को बंसी थमा दी, राम तेरी बंसी। और आप लोग जो इतने हंस रहे हैं, वहां पे किसी को कुछ पता ही नहीं लगा। ये आजकल भारत का हाल कि कौन बंसी बजा रहा है, कौन धनुष चला रहा है, किसी को कोई पड़ी नहीं है। एक व्यक्ति अपने प्रवचन में ये व्यक्ति अपने हरे कृष्णा का भक्त नहीं था, तो ये इसने ऐसे ही सोचा कि मैं कुछ बोलने का प्रयास करता हूं। ये था वैसे बंबई का थोड़ा गुंडा पार्टी का व्यक्ति, तो इसने प्रवचन में महाभारत की कुछ लीलाएं बोलना शुरू किया, क्योंकि वो थोड़ा बहुत जानता था महाभारत में क्या हुआ है। महाभारत में वो बोलता है कि द्रौपदी का चीर कुंभकर्ण जब हर रहा था, द्रौपदी का चीर कुंभकर्ण कर रहा था, तो एक व्यक्ति उसको बार बार बोलने लगा, भाई देखो ये द्रौपदी का चीर हरण दुशासन ने किया, दुशासन। तो उसको वहीं पे चुप किया, तुम चुप, मैं जो बोल रहा हूं पहले सुन, प्रश्न और टीकाएं बाद में। तो उसे सहन नहीं हुआ, उसने बोला कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तुम कुछ भी बोलते हो, ये कहां रामायण को घुसा रहे हो महाभारत में, महाभारत। तो वो अपनी उसने गुप्ती निकाल ली, उसने अपनी गुप्ती निकाल के कहता है, द्रौपदी का चीरहरण दुशासन ने किया या कुंभकर्ण ने किया, तेरे बाप का क्या जाता है। तो कई बार हम यदि 100 करोड़ श्रीमद् भागवत के श्लोक लें, इसमें ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी के चार मुख, चार सर और उन पूरे बुद्धि से बने हुए, इसलिए वो ये जो श्रीमद् भागवत है, भगवान श्री कृष्ण का यश जिसमें बताया गया है, 100 करोड़ भी कम है, 100 करोड़ भी कम है, इसलिए अनंत शेष वो नित्य काल से वो भगवान का गुणगान किए जा रहे हैं अपने अनंत फनों से, फिर भी कहीं और छोर वो नहीं पहुंच पाए भगवान के यश का गुणगान करते हुए। ये एक घटना हुई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने नद्या प्रकाश नामक एक दैनिक समाचार शुरू किया, और इसमें केवल आध्यात्मिक लोक का समाचार। तो एक व्यक्ति ने भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर से आके पूछा कि रोज आप पेपर निकाल रहे हैं, ऐसा क्या न्यूज मिलेगा आपको आध्यात्मिक संसार का न्यूज कि रोज पेपर निकाला जा सके। तो इन्होंने उत्तर दिया कि ये जो कलकत्ता में ये प्रश्न पूछा गया, तो बोले ये जो कलकत्ता है ये इतना सा शहर है ये भारत में, और ये भारत एक इतना सा देश है पूरे पृथ्वी पर, और ये पृथ्वी एक राई के दाने के समान है ये पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में जो जितने ग्रह है उसकी तुलना में पृथ्वी राई के दाने के समान है, और ये सारे ब्रह्मांड इनमें से एक ब्रह्मांड वो पूरी सृष्टि में जितने भगवान ने अलग अलग ब्रह्मांड बनाए हैं ये एक ब्रह्मांड राई के दाने के समान है, और ये पूरी भगवान की सृष्टि भौतिक ये एक चौथाई है केवल, और आध्यात्मिक संसार है तीन चौथाई। तो ये एक कलकत्ता में तुमने 25 पेपर खोल रखे हैं, और वो जो तीन चौथाई भगवान का आध्यात्मिक संसार है, तुम प्रश्न पूछ रहे हो कि रोज कैसे पेपर आप निकाल रहे हो, अरे हर क्षण यदि मैं वहां के समाचार सुनाऊं आध्यात्मिक संसार के तो पेपर कम पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ये सिद्ध कर रहे थे भगवान का यश इतना है। रामानंद राय चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु इनके साथ जो संवाद कर रहे थे रामानंद संवाद में, उन्होंने पूछा कि असली यशस्वी व्यक्ति कौन है। तो रामानंद राय कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है वो यशस्वी है। अर्थात वो ये सिद्ध कर रहे थे कि जो भगवान कृष्ण का भक्त बन जाता है वो यशस्वी बन जाता है, तो फिर भगवान श्री कृष्ण का तो क्या कहना। अगला ऐश्वर्य संपूर्ण सौंदर्य। इसलिए देखिए भगवान विशेष रूप से अपनी सुंदरता इस भौतिक संसार में और हर समय दिखाते हैं, क्योंकि जैसे हमने चर्चा की कि आजकल के जो तथाकथित भगवान हैं केवल इनका फोटो देखो कि कोई किसी को दिखा दो तो कुत्ते भौंकना शुरू कर दें इनके ऊपर, और भगवान बने फिर रहे हैं, अपना अपना नाम भगवान इस प्रकार से मंत्र निकाल लिया अपना खुद का, और लोगों को बोलते हैं कि इसको जप करो, ये मेरा मंत्र है जप करो। तो भगवान संपूर्ण सुंदर, इसलिए वो भगवान है। इसमें एक ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभाम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण में और शिवजी में एक अंतर ये दिखाया उन्होंने कि कामदेव इस भौतिक संसार में जो भी व्यक्ति किसी की सुंदरता देखना चाहता है या सुंदर बनना चाहता है या सुंदर है वो कामदेव की कृपा से, क्योंकि सबसे सुंदर है कामदेव, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं क्यूपिड, हु मेक्स अ स्टूपिड आउट ऑफ एवरीवन। तो क्यूपिड, तो कामदेव वो बहुत सुंदर हैं, और कामदेव ने जब अपनी सुंदरता शिवजी को दिखाई तो शिवजी ने क्या किया, जला के भस्म कर दिया। तो शिवजी से कामदेव बहुत डरते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण को जब कामदेव ने देखा तो एक नहीं कंदर्प, उनको कंदर्प भी कहते, कंदर्प कोटि, करोड़ों कामदेव कमनीय, अर्थात उनकी यही कामना रहती है कि कब इनकी सुंदरता देखने मिले भगवान श्री कृष्ण की। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सुंदरता से कामदेव को मोहित कर लिया, मदन मोहन, परंतु शिवजी उन्होंने कामदेव के मन में भय उत्पन्न किया। तो भगवान की सुंदरता यहां पर यह बताई गई, इसका बखान किया गया है कि यदि स्वयं कामदेव कमनीय जिनकी कामना करते हैं देखने के लिए वो है परम सुंदर भगवान। गोपियों की शिकायत ब्रह्मा जी से, भगवान की सुंदरता देखते हुए उनकी जो पलकें बंद होती थी, तो ब्रह्मा जी को उन्होंने कंप्लेंट रखा कि ये क्या पलकें आपने बनाई हैं, कुछ बनाना आना चाहिए आपको, क्या है ये पलकें जो, अब देखिए कितनी बार, ये बहुत ही सुंदर उनका उद्गार है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, लोग कितनी सुंदरता का गुणगान करते हैं इस भौतिक संसार में, परंतु कौन शिकायत करता है कि तुम्हारी सुंदरता देखते हुए मेरी पलकें वो बंद होती हैं, कई बार तो बंद करनी पड़ती है। यहां पर गोपियों की शिकायत अब बताया गया है कि ये पलकें जो बंद होती हैं वो एक सेकंड का 72वां भाग यदि आप करो उसे कहते हैं निमिष। पलकें बंद होने का जो समय साधारण तरह, प्रवचन के बीच में नहीं बोल रहा हूं मैं, साधारण जब पलकें हमारी बंद होती खुलती हैं तो एक सेकंड का 72वां भाग उसे निमिष कहते हैं। तो गोपियां शिकायत कर रही हैं उतना समय वेस्ट हो गया, भगवान की सुंदरता हम उसमें अवरोध आ गया भगवान की सुंदरता को देखने के लिए। तो इससे यह समझ में आ रहा है कि भगवान कितने सुंदर हैं, कि गोपियां हमें बता रही हैं कि इतने सुंदर हैं भगवान। हमें तो इतनी सुंदरता नहीं दिखती होगी परंतु गोपियों की आंखों के द्वारा हम ये कल्पना कर सकते हैं। महाविष्णु, महाविष्णु इन्होंने एक बालक की चोरी कर ली, ब्राह्मण के पुत्र की चोरी कर ली और किसी को पता नहीं, लापता हो गया। तो अर्जुन के पास ये ब्राह्मण आता है, अर्जुन फिर भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आते हैं कि ये हमारे राज्य का व्यक्ति, इसका बालक लापता हो चुका है, पता नहीं कहां गया, किसी को पता नहीं। भगवान जानते थे कि महाविष्णु ने चोरी की। सोचिए महाविष्णु, वो भी चोरी करते हैं। तो महाविष्णु ने बालक की चोरी इसलिए की क्योंकि महाविष्णु जो अपना पूरा ऑफिस का काम संभाल रहे हैं उनको टाइम नहीं मिल रहा है। पूरी सृष्टि को संभाले हुए महाविष्णु को टाइम नहीं मिल रहा था कि भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं का दर्शन वो कर सकें। परंतु सुन रहे थे सभी आते जाते, ब्रह्मा जी इंद्र ये सभी आते जाते महाविष्णु को बोलते, अरे उन्होंने ऐसी लीला की, आज ये हुआ वो हुआ। तो महाविष्णु केवल लगे हुए अपने ड्यूटी पे वो नहीं देख पा रहे। तो उन्होंने क्या किया, वो चोरी कर लिया। चोरी करेंगे तो फिर ये आएंगे यहां पर और तब जाकर उनकी सुंदरता देखने मिलेगी। तो महाविष्णु ने चोरी की वो बालक की ताकि भगवान श्री कृष्ण उनके धाम आए उस बालक को रिहा करने के लिए, और उस बहाने महाविष्णु भगवान का सुंदर रूप का दर्शन कर सके। और स्वयं श्री कृष्ण आकृष्ट रहते हैं, वो जो चित्र हमने देखा भगवान ने अपने ही सुंदर स्वरूप को देखा, उसके प्रतिबिंब को, और भगवान पूछने लगे कि ये कौन इतना सुंदर व्यक्ति है। कई बार हम भी ऐसे है ना, शीशे के सामने खड़े, कौन है इतना सुंदर। परंतु उस प्रकार से ये बहुत अंतर है उसमें, जमीन आसमान का। संपूर्ण ज्ञान, अब इसमें हालांकि सामने है, भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान सुनाया, परंतु इसके साथ साथ भगवान ने यह भी बताया कि भूत वर्तमान और भविष्य के हैं जो ज्ञाता, वो परम ज्ञानी, अर्थात सब कुछ जो जानते हैं, भूत वर्तमान और भविष्य इसके अलावा है क्या। इसलिए ये उनका एक ऐश्वर्य, संपूर्ण ज्ञान, सभी जीवों के सभी जन्मों का ज्ञान रखने वाले, अर्थात हम एक एक जो इस कमरे में बैठे हुए हैं, हम कितने जन्मों से क्या कुछ नहीं हमने किया। अर्थात यदि मैं 100 जन्म पहले किसी पशु की योनि में या किसी पेड़ की योनि में मैंने क्या किया, क्या सोचा, वो सब का रिकॉर्ड। जैसे कई बार आप जाओ किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, हम लोग गए थे साइन कराने के लिए हमारे लैंड के लिए, तो पूरा एक कमरा है भरा हुआ रिकॉर्ड का, कि किस व्यक्ति ने कौन से वर्ष में कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी बेची। परंतु सोचिए ये केवल एक इतना सा एक नासिक क्षेत्र, उसका वो एक इतना सा रिकॉर्ड। यहां पर एक व्यक्ति भगवान जो कि अंतर्यामी हम सब के हृदय में, हम सब के अलग अलग जन्मों में हमने क्या सोचा, केवल कर्म नहीं, हमने क्या क्या सोचा उसका भी रिकॉर्ड है। सोचिए इससे ज्यादा ज्ञानवान और कौन हो सकता है। सभी ज्ञानियों को परमात्मा रूप में ज्ञान देने वाले जो बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी बने बैठे हैं और अपने पीछे इतनी लंबी चौड़ी डिग्रियां उन्होंने लगा रखी हैं, उन सबको जो ज्ञान देने वाले हैं वो हैं परमात्मा, जो कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के एक अंश हैं केवल, इसलिए वो संपूर्ण ज्ञान धारण किए हैं, संपूर्ण वैराग्य। ये चित्र क्या हमें सिखा रहा है, भगवान का संपूर्ण वैराग्य इसमें कैसे दिखता है कि इतना ऐश्वर्य होने के बावजूद ड्राइवर बने, अर्जुन का ड्राइवर बने। देखिए ड्राइवर, किसी ड्राइवर को भी ड्राइवर बोला जाता है तो उसको चुप जाता है, तो ड्राइवर कैसे बोला? नहीं नहीं गाड़ी चलाने वाला, ठीक है गाड़ी चलाने वाला, ड्राइवर वो शब्द थोड़ा ये हो जाता है लोगों के मन में। लेकिन भगवान फोटो खिंचाए अपना, खींचो मेरी फोटो, अर्जुन का ड्राइवर बनाऊं मैं। ये देखिए ये एक बहुत ही मार्मिक मुद्दा है कि हम बद्ध जीव भगवान की प्रॉपर्टी भोग करने के लिए भगवान को ही छोड़ के आए और यहां आकर उन्हीं को गाली देते हैं। बद्ध जीव भगवान की प्रॉपर्टी अर्थात भगवान का दिया खा खा कर मोटा हो होकर और भगवान को गाली देते हैं ये नास्तिक। तो सोचिए भगवान के अंदर कितना वैराग्य है, ये भगवान का वैराग्य दिखा रहे हैं। नहीं तो भगवान अपने काल स्वरूप में सबको खत्म करके जिसने भी इच्छा की भगवान के विरुद्ध जाने की, क्या भगवान उनको उसी समय खत्म नहीं कर सकते थे? परंतु भगवान का वैराग्य देखे कि हमारे लिए अलग से ये सृष्टि बनाई इतनी बड़ी, इसमें इतने सारे अलग अलग भोग करने के साधन, और फिर भी भगवान चिंतित रहते हैं कि कब ये बद्ध जीव मेरे पास फिर से आएगा, क्या करने के लिए? मेरे आध्यात्मिक धाम का भोग करने के लिए। तो भगवान अपना आध्यात्मिक धाम दे देते हैं, उसकी चाबियां दे देते हैं अपने भक्तों को भोग करने के लिए। कोई यदि भगवान को तिरस्कार कर कर यहां पर भी आया तो यहां पर भी सुविधा प्रदान करते हैं। यह है इनका वैराग्य। कभी मांगा नहीं बिल, इतना सूर्य की रोशनी हमने ले ली है, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भेजा, इतना पानी पी पी के, इतना खाना खा खा के हम ये जन्म से वो जन्म जी रहे हैं, मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, परंतु फिर भी कभी भगवान अपना बिल नहीं भेजा। तुम मेरे प्रॉपर्टी पे बैठे हो और तुम अपना 7-12 साइन करा रहे हो अपने प्रॉपर्टी खुद के नाम का, कभी नहीं। ये है भगवान का वैराग्य। ये भगवान ने जो जरासंध को भगवान ने 17 बार हराया और उसके बाद फिर से जरासंध आ जाता अपने सेना को लेकर। हालांकि भगवान जरासंध, बलराम जी भगवान से पूछ रहे थे, बलराम जी बोले इसको मार क्यों नहीं डालते, ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, ये जरासंध 17 बार आ गया, इसको मार डालो, खत्म हो गया काम। भगवान श्री कृष्ण देखिए बहुत चतुर, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से बोले कि नहीं नहीं नहीं, अरे वो हमारा काम कर रहा है ना। तो बलराम जी ने पूछा हमारा क्या काम कर रहा है? देखो एक बार मैं इसे हराता हूं तो फिर ये और नई सेना लेके आता है, जितने सारे सब इसके चेले चपाटे हैं राक्षस, उन सबको हम कहां ढूंढते फिरेंगे। तो ये हमारे लिए काम कर रहा है ना, हम इसको नहीं मारेंगे, इसकी सेना को मारेंगे, तो हम बैठे बैठे ये लेके आएगा सबको और फिर इसकी पूरी सेना को खत्म करेंगे, फिर जा और लेके आ। और जरासंध इतना मूर्ख, वो जाके फिर से 17 बार उसने अपनी नई नई सेना लेकर आया और 17 बार भगवान ने उसकी सारी सेना को परास्त किया। उसके बाद में भगवान जब 18 बार जरासंध आया अपनी सेना लेकर, भगवान रन छोड़ के चले गए। भगवान ये दिखाना चाहते थे कि मैं किसी पारितोषक के लोभ में नहीं हूं कि मुझे कोई ये दे कि जरासंध को मैंने मारा, मैं था वो जरासंध को। भगवान ने भीमसेन को कहा जरासंध को मारने के लिए और भगवान ने अपने ऊपर ये नाम ले लिया रणछोड़। उसमें भी भगवान प्रसिद्ध हुए, ये भगवान क्योंकि संपूर्ण यशस्वी हैं तो रण छोड़ते भी हैं, उसमें भी भगवान की प्रसिद्धि। अर्जुन रण छोड़ रहे थे और उसमें भगवान कहते हैं इसी श्लोक में, अकीर्ति अकीर्ति कर्म अर्जुन, तुम्हारी अकीर्ति होगी। तो अर्जुन मानो आगे चल के भगवान से पूछे, जब भगवान रण छोड़ के भाग रहे थे, श्लोक याद है ना, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, वो भगवान पर लागू नहीं होता, इसलिए भगवान है। अर्जुन के भगवान सारथी बने, अर्थात इसकी तो व्याख्या और बहुत हम कर सकते हैं, इतना समय नहीं आज। भगवान ने माखन चोरी जो की, इसमें भी भगवान ने अपना वैराग्य दिखाया कि चोरियां भी कोई व्यक्ति करता है तो हाँ कुछ स्टैंडर्ड की चोरी करता है। यहां भगवान अपना वैराग्य कि गोपियों को प्रसन्नता देने के लिए यदि मैं माखन चोर भी बनूं, तो भगवान ने अपना वैराग्य उसके अंदर दिखाया गोपियों को प्रसन्न करने के लिए। असंख्य शक्तियों के बावजूद भगवान अपने भक्तों पर आश्रित रहते हैं। रोज भगवान रोते हुए माता यशोदा के गोद में बैठते कि मुझे भूख लगी है, मुझे तुम्हारा स्तनपान करना है, मुझे कुछ भोजन दो। भगवान के पास इतनी सहस्त्र लक्ष्मियां हैं जो तैयार हैं और जो चिंतित रहती कि भगवान कहीं हमको छोड़ के ना चले जाएं। और वो भगवान नंद यशोदा इनके पीछे भूखे प्यासे घूमते फिरते हैं, कुछ दे दो कुछ दे दो, कुछ खाने के लिए दे दो कुछ खाने के लिए दे दो। इसमें भगवान अपना वैराग्य दिखाए। अब कुछ अन्य इस श्लोक के शब्द हैं जिस पर हम थोड़ा संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे। कुतस्त्वा कश्मलम इदम्, भगवान ने कहा, भगवान आश्चर्य कर रहे हैं कि अर्जुन कुत कहां से तुम्हारे अंदर ये कलमश आए, तुम्हारे अंदर ये कलमश कहां से आए। इसलिए भगवान आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि अर्जुन जैसे व्यक्ति के अंदर कलमश कहां से आ सकते हैं। अर्थात भगवान ये अर्जुन के द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि मनुष्य जीवन में हमारा उद्देश्य होना चाहिए कलमशों से मुक्त होना, और यदि कलमशों से हम मुक्त नहीं हुए, केवल शरीर को स्वस्थ किया, मन को कलमशों से, हृदय को कलमशों से शुद्ध नहीं किया, तो भगवान आश्चर्य करके पूछते हैं कि क्या फायदा तुम्हें मनुष्य जीवन देने का, कुतः, क्यों ये कलमश अब तक तुम्हारे अंदर है। विषमे समु उपस्थितम, भगवान यहां पर बोल रहे हैं कि इस विषम स्थल पर, ये रणभूमि पर तुम अब ये अपना गांडीव छोड़े हो, तो इसके द्वारा भगवान अर्जुन को यह बोल रहे हैं कि अर्जुन ये समझो कि तुम गांडीव और कहीं पर फेंक देते या बैठ जाते या रोना शुरू करते तो मैं मान लेता, ये इस जगह पर इस समय तुम ये जो कर रहे हो ये अकीर्ति तुम्हारे लिए लाएगा। तो भगवान ये दिखा रहे थे कि शोक भी करना है तो उसका स्थान होना चाहिए, उसका समय होना चाहिए, कहीं पर भी बैठ के रोना शुरू नहीं करना चाहिए। ये भगवान इसके द्वारा बता रहे हैं, विषम में सम उपस्थित हम। जैसे कि रण पूरी कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर महाराज ने भी शोक किया। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि युधिष्ठिर महाराज ने जब देखा इतने सारे सैनिक मरे हुए, क्योंकि मुझे राजा बनना था, तो युधिष्ठिर महाराज शोक करने लगे। तो ये कहा गया है कि युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज का शोक वो अनिवार्य, वो ठीक था, परंतु यहां पर अर्जुन युद्ध के पहले जो शोक कर रहे हैं वो अनिवार्य नहीं। जैसे कि रामायण में वर्णन है कि रामचंद्र जी ने जब देखा लक्ष्मण को तीर मार दिया है रावण ने, और लक्ष्मण मूर्छित गिरे हुए हैं, तो प्रभु श्री राम ने सबसे पहले रावण के ऊपर प्रहार किया, और फिर रावण जब वहां पर धूम दबा के भाग गया, तब फिर प्रभु श्री राम लक्ष्मण प्यास आके शोक करने लगे। तो प्रभु श्री राम ने सिखाया कि उस समय उस स्थान पर शोक नहीं करना था, उन्हें उनका कर्तव्य निभाना था। तो ये भगवान इसके द्वारा सिखा रहे थे। अनार्य जुष्टम, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तुम एक आर्य हो, तुम ये अनार्य की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? आर्य का अर्थ होता है जो मनुष्यों में सबसे ऊंचे दर्जे का हो, आर्य उसे बोलते हैं। यहां पर अनार्य, तो भगवान मानो ये बोल रहे हैं कि एक आर्य वो केवल सही कारण के वजह से शोक करता है, परंतु तुम्हारा जो कारण है वो इतना नगण्य है, इसलिए तुम एक आर्य हो परंतु अनार्य की तरह व्यवहार कर रहे हो, इसलिए भगवान ये शब्द इस्तेमाल किए। और भगवान ने कहा कि अर्जुन, न तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा ये रण छोड़कर, और न ये सारे जो योद्धा आए हैं इनको तुम स्वर्ग दिलाओगे, क्योंकि तुम यदि युद्ध करोगे, इनको मारोगे, तो ये तुम्हारे हाथों जो मरेंगे तो इनको स्वर्ग मिलेगा। तो तुम सोच रहे हो कि मैं इनको मारकर मेरी दुर्गति कर रहा हूं, इनकी दुर्गति कर रहा हूं, तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम यदि इनको मारोगे तो इनको स्वर्ग मिलेगा, और यदि ये तुम्हें मारेंगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, परंतु तुम छोड़ के जाओगे तो न तो तुम्हें स्वर्ग मिलने वाला है न इनको स्वर्ग मिलने वाला है। इसलिए भगवान थोड़ा लोभ दे रहे हैं अर्जुन को, अस्वर्गम। और अंततः भगवान कहते हैं कि ये मत सोचना तुम छोड़ के जाओगे तो ये लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे, देखो कितना कृपालु कितना वैरागी है। भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मैं रण छोड़ के जाता हूं तो मेरा मंदिर खड़ा होता है, तुम छोड़ के जाओगे तो अकीर्ति, तुम्हें केवल अकीर्ति मिलेगी, तो तुम मेरा पद लेने का ट्राई मत करो। अर्थात ये तो भगवान ने आगे लीला की। तो इसलिए ये जो दूसरा श्लोक है दूसरे अध्याय का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें अब भगवान ने गीता बोलना प्रारंभ किया है। और अगले श्लोक में अब भगवान, जैसे कि एक डॉक्टर देखता है लक्षण देखता है बीमारी के, और फिर बताता है कि बीमारी कहां पर है, कहां पर स्थित है। तो अगले श्लोक में अब भगवान कहेंगे कि ये तुम्हारे जो कलमश हैं, इतना शोक और इतने अश्रु, ये सब जो तुम दिखा रहे हो ना, ये सारे जो तुम्हारे लक्षण हैं, ये सारे लक्षण ये बीमारी की जड़ क्या है वो बता रहे हैं अगले श्लोक, जिसकी चर्चा हम करेंगे अगले बुधवार को। कृष्णचंद्र की जय।